ईशानी जानबूझकर रुद्राक्ष को इग्नोर कर रही थी। ये बात रुद्राक्ष को अच्छी नहीं लगी। वो ईशानी के पास बात करने के लिए आया तो ईशानी उठकर जाने लगी। रुद्राक्ष ने उसे याद दिलाया कि उसने कल रात उससे वादा किया था कि वो उसकी सारी बात मानेगी। अचानक ही रुद्राक्ष ने ईशानी को किस करने के लिए कहा तो ईशानी ने साफ मना कर दिया। उसे लगा रुद्राक्ष ऐसे ही उसे परेशान करने के लिए बोल रहा है, लेकिन तभी रुद्राक्ष ने वसीम शेख को कॉल लगा लिया था। उनकी बातें सुनकर साफ जाहिर हो रहा था कि रुद्राक्ष वसीम शेख को ईशानी के बारे में सब कुछ बता देगा। रुद्राक्ष कुछ बोल पाता उससे पहले ईशानी जल्दी से दौड़कर उसके पास आई और उसने रुद्राक्ष के होठों को कैप्चर कर लिया। उसने रुद्राक्ष को बोलने का मौका भी नहीं दिया और उसे किस करने लगी। वहीं रुद्राक्ष का जवाब नहीं आने पर वसीम शेख फ्रस्ट्रेट होकर बोला, तुमने मुझे चिढ़ाने के लिए कॉल किया है क्या रुद्राक्ष खुराना? मिस्टर मित्तल से जुड़े हुए हो, इसका मतलब ये नहीं कि मैं इस बात को भूल जाऊंगा कि तुम्हारी पत्नी कौन है। मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन तुम्हारी पत्नी को मैं, वसीम बोल रहा था तभी रुद्राक्ष ने दूसरे हाथ से कॉल कट कर दिया। उसका एक हाथ ईशानी की पीठ पर था और वो पूरी इंटेंसिटी से ईशानी को किस कर रहा था। कॉल स्पीकर पर था, इस वजह से कट होते ही ईशानी को समझ आ गया था। वो रुद्राक्ष से दूर होने की कोशिश करने लगी, लेकिन रुद्राक्ष उसे छोड़ ही नहीं रहा था। कुछ ही देर में ईशानी ब्रेथलेस होने लगी, तब रुद्राक्ष ने उसे खुद से अलग किया। रुद्राक्ष की इस हरकत पर ईशानी घूर कर उसकी तरफ देख रही थी। वो गहरी सांस लेते हुए बोली, ये गलत है, आप इस तरह मेरा फायदा नहीं उठा सकते। लेकिन मैं उठा सकता हूँ, क्योंकि इसकी परमिशन तुमने खुद दी है। सोचो, अभी तक तो मैंने सिर्फ एक किस का कहा है, चाहूँ तो मैं और भी क्रिएटिव हो सकता हूँ, रुद्राक्ष ने भौहें उठाकर कहा। ईशानी उसके कहने का मतलब अच्छे से समझ रही थी। उसने सिर हिलाया और फिर वहां से कमरे में भाग कर चली गई। ईशानी के जाते ही रुद्राक्ष ने वापस वसीम को कॉल किया। उसने कॉल पर कहा, सॉरी, नेटवर्क इशू होने की वजह से कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। अच्छा हुआ तुमने वापस कॉल कर लिया, वरना मुझे यही लगता कि तुम मुझसे दुश्मनी लेना चाहते हो, वसीम ने सख्त आवाज में जवाब दिया। मुझे तुमसे दुश्मनी या दोस्ती निभाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। रही बात कल रात जो मेरे साथ पार्टी में आई थी उस लड़की की, तो वो मेरी वाइफ है। मैं नहीं जानता उसने तुम्हारे साथ क्या किया है या क्या नहीं, पर वो बात पुरानी हो चुकी है। बेहतर होगा कि तुम अब उसे नुकसान पहुंचाने का नहीं सोचोगे। अगर तुमने ऐसा किया तो रुद्राक्ष खुराना भी अपने पर आ सकता है, और अगर मैंने ये किया तो पता भी नहीं चलेगा कि कब कहाँ मिलोगे। मुझे चैलेंज करने की कोशिश मत करना, फिलहाल के लिए इतना ही बता सकता हूँ। तुम्हारे दुश्मन स्टीव हैरिंगटन थे, मेरे रास्ते में आने की कोशिश कर रहा था, और अब वो कहाँ है तुम्हें अच्छे से अंदाज़ा होगा। रुद्राक्ष ने सीधे सीधे वसीम को अच्छे से समझा दिया था और फिर कॉल कट कर दिया। वहीं उसके इस तरह धमकी देने पर वसीम को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने अपना मोबाइल फेंकते हुए कहा, यह आदमी समझता क्या है अपने आप को, मुझे धमकी दे रहा है। एक मामूली सा बिजनेसमैन होकर मुझे धमकी देने की कोशिश कर रहा है। मुझे मित्तल से बात करनी होगी और इस लड़के ने जो भी किया है उसके बारे में बताना होगा। इतनी आसानी से मैं उन दोनों को जाने नहीं दूंगा। वसीम इस वक्त बहुत गुस्से में था। उसने उसी वक्त मित्तल को कॉल किया। उसका कॉल देखते ही मित्तल समझ गया था कि वो क्या कहना चाह रहा होगा। वसीम की कुछ भी कहने से पहले राहुल मित्तल बोला, मैं जानता हूँ तुमने कॉल क्यों किया होगा। मैंने तुमसे वादा किया था, तुम जिस लड़की की तलाश में हो वो तुम्हें मैं लाकर दूंगा, लेकिन जब तक मैं नहीं कहता तुम उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखोगे। और मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? वो रुद्राक्ष खुराना मुझे धमकी दे रहा था, उसकी इतनी हिम्मत जो वसीम शेख को धमकी दे रहा है, वसीम गुस्से में चिल्लाकर बोला। बरसों पुरानी दोस्ती और पार्टनरशिप को तुम इतनी आसानी से नहीं तोड़ सकते हो। कहा ना, मैं तुम्हें ईशानी लाकर दूंगा, मेरे इशारे तक तुम उसे कुछ नहीं करोगे, राहुल मित्तल ने सख्त आवाज में कहा। वसीम ने अपना गुस्सा शांत करने के लिए पानी पिया और फिर कहा, सिर्फ तुम्हारे कहने पर थोड़ा इंतजार करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे अलावा वो लड़की किसी और के पास नहीं जानी चाहिए। राहुल मित्तल ने वसीम को मना लिया था और उसके कहने पर वसीम थोड़ा इंतजार करने के लिए भी तैयार हो गया था। रुद्राक्ष को उसके केबिन में छोड़कर ईशानी इस वक्त किचन में थी और अपने लिए खाना बना रही थी। अभी भी खुराना फैमिली उसके लिए नीचे से खाना नहीं भेजती थी और ना ही कोई हाउस हेल्पर ऊपर कोई काम करने आता था। इस वजह से ईशानी को ही सब कुछ करना पड़ रहा था। माया के इस फैसले के आगे रुद्राक्ष ने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन वो खाना खाने के लिए नीचे नहीं जाता था, इसलिए ईशानी को उसके लिए भी कुक करना पड़ता था। ईशानी खाना बनाते हुए अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालते हुए बोली, अजीब फैमिली है, ऐसे तो बड़ी उसूलों वाली बनती है और ऐसे अपनी बहू को खाना तक नहीं देते। सब कुछ मुझे करना पड़ रहा है, खाना बनाने के बाद यहाँ की सफाई तक करनी पड़ेगी। अजीब मुसीबत है यार, इतने बड़े फ्लोर की सफाई कैसे होगी मुझसे। ईशानी के चेहरे पर परेशानी के भाव थे। खाना बनते ही जब वो बाहर डाइनिंग एरिया में आई तो उसने देखा पूरा एरिया बिल्कुल साफ था। उसकी नज़र रुद्राक्ष की तरफ गई जो वैक्यूम क्लीनर के पास खड़ा हुआ था। रुद्राक्ष को अपनी हेल्प करते देख ईशानी के चेहरे पर छोटी सी स्माइल आ गई और वो धीरे से बोली, अगर ये उस चुड़ैल आलिया का भाई नहीं होता और मुझसे ज़बरदस्ती शादी नहीं करता तो पक्का मुझे इससे प्यार हो जाता। पता नहीं उसकी बातों में आकर क्यों उल्टी सीधी हरकतें करता रहता है, जबकि कितना स्वीट सा तो है।
ईशानी खोई हुई नजरों से रुद्राक्ष की तरफ देख रही थी। ये रुद्राक्ष ने नोटिस किया। ईशानी को मुस्कुराता देखकर रुद्राक्ष उसके पास गया और उसके आगे चुटकी बजाकर उसका ध्यान तोड़ते हुए कहा, इस तरह मत देखो मुझे, गलती से प्यार मत कर लेना। डिवोर्स पेपर साइन किए हैं हमने और हमारा डिवोर्स होकर रहेगा। सारा मूड ही खराब कर दिया, ईशानी धीरे से बोली। उसने रुद्राक्ष से कुछ नहीं कहा और खाना सर्व करने लगी। रुद्राक्ष फ्रेश होने के बाद उसके सामने आकर बैठ गया था। वो दोनों लंच करके खड़े ही हुए थे कि तभी लिफ्ट का दरवाजा खुला। रुद्राक्ष ने ईशानी को अंदर जाने का इशारा किया। मुझे अंदर क्यों भेज रहे हो, ईशानी ने मुंह बनाकर कहा। पहले अपने कपड़े देखो, यहाँ कोई आया है तो फैमिली मेंबर ही होगा। तुम्हें फिर से उनकी कड़वी बातें सुननी है तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है, खड़ी रहो यहीं पर, रुद्राक्ष ने कोल्ड वॉइस में जवाब दिया तो ईशानी जल्दी से अंदर चली गई। ईशानी के मन मुताबिक कपड़े नहीं होने की वजह से अभी भी वो रुद्राक्ष के ही कपड़े पहनती थी। इस वक्त उसने रुद्राक्ष का शर्ट पहना हुआ था जो उसके मिथाई तक आ रहा था। लिफ्ट में से आलिया और संजना साथ बाहर आई थी। संजना को अचानक वहां देखकर रुद्राक्ष को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और ये उसके चेहरे से साफ जाहिर हो रहा था। आलिया संजना का हाथ पकड़कर उसे आगे लेकर आई और रुद्राक्ष से कहा, इसने तो मना किया था कि ये आपके फ्लोर तक नहीं आएगी, लेकिन मैं ही इसे जबरदस्ती यहाँ पर ले आई। तुम्हें किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए आलिया, रुद्राक्ष ने सीरियस टोन में कहा। उसका ये जवाब सुनकर संजना थोड़ी ऑकवर्ड हो गई। वो धीरे से बोली, शायद रुद्र को मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा। कोई बात नहीं, मैं चली जाती हूँ, मुझे भी यहाँ आने में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। ये जगह मेरी होने वाली थी, यहाँ मैं किसी और को नहीं देख पाऊंगी। संजना वहां से जाने देगी तभी रुद्राक्ष ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, थोड़ा टाइम मांगा था मैंने तुमसे, अगर नहीं देना था तो फिर हाँ क्यों कही। कुछ वक्त के लिए दूर रहने का बोला था, इसका मतलब दूर ही रहना है।
संजना और रुद्राक्ष में बहस ना हो जाए और इसका फायदा ईशानी ना उठा ले, ये सोचकर आलिया ने बीच में बोलते हुए बात को संभालते हुए कहा, कम ऑन भाई, अब इतना रूड होने की भी जरूरत नहीं है। संजना आपकी होने वाली वाइफ है, अगर कुछ घटिया लोग गिरी हुई हरकत नहीं करते तो आप दोनों की शादी हो रही होती ना, ना कि इस तरह दोनों के बीच बहस। बोलते हुए आलिया ने इधर उधर देखते हुए ईशानी को देखने की कोशिश की। आलिया की आवाज़ सुनकर ईशानी समझ गई थी कि वही आई है, तो उसे आलिया से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। संजना से वो पहले भी मिल चुकी थी और उसे पता था कि संजना और रुद्राक्ष की सगाई हो चुकी है। ईशानी बिना किसी आवाज़ के कमरे से बाहर निकल आई। उसे रुद्राक्ष के शर्ट में देखकर आलिया और संजना दोनों हैरान थी और साथ में गुस्सा भी। ये आपके कपड़ों में क्या कर रही है, आलिया ने गुस्से में चिल्लाकर पूछा। मैं कुछ नहीं कर सकता, ये मेरी नहीं सुनती है, रुद्राक्ष सिर हिलाकर बोला और फिर वहां से अपने केबिन में चला गया। रुद्राक्ष के जाते ही ईशानी के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट आ गई। वो मन ही मन बोली, अरे वाह मिस्टर खुराना, आप पर मेरी संगति का असर हो रहा है, बिल्कुल सही किया जो हमें अकेला छोड़ दिया, अब लड़ाई करने में ज्यादा मजा आएगा। रुद्राक्ष वहां मौजूद नहीं होता तो ईशानी और आलिया एक दूसरे पर अच्छी तरह से अपनी भड़ास निकाल सकती थी और इस वक्त दोनों एक दूसरे को खा जाने वाली नजरों से देख रही थी। अब तो फिर से ननद भाभी वाले कलेश होंगे, देखते हैं कौन क्या कहता है। अगले पार्ट पर मिलते हैं, पढ़कर रिएक्ट कर दीजिएगा।